आप SBS उर्दू सुन रहे हैं।
They do ask me a weird question, which I'm not sure I understand. Everyone asks me when I tell them, you know, they go, where do you come from? And I say, I've come from Pakistan. And then they go, how did you get here? And I tell them the truth. I took the boat a few times. I got sent back. And then I, you know, but I collected enough miles to upgrade to Qantas and I flew it.
अगर अभी तक आपने इनकी आवाज़ से इनको नहीं पहचाना तो मैं आपको बताती हूँ। ये हैं समी शाह, पाकिस्तान में कराची से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कुछ साल पहले वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया आकर बस गए। समी शाह का शुमार बेशक उन चंद स्टैंड अप कॉमेडियंस में से होता है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन किया। उनकी शख्सियत में कुछ मकनातीसी सी ताकत है और उनकी बातों में कुछ ऐसी दिलचस्पी कि सुनने वाला उनकी बात शुरू होने से पहले ही हंसना शुरू हो जाता है। मैंने आज के शो के लिए उनसे बात की, कुछ हल्के और कुछ हसास और संगीन मौजूदात पर भी। इसी वक्त में वो कुछ तनाजात का शिकार भी रहे, लेकिन आज मैं आपको समी शाह का वो रुख दिखाऊंगी जिससे शायद आप अभी तक नाआशना हैं।
Every time I've done it, I've had the same reaction you guys gave me today. Every single time. And I think what happens, and this actually happened, people have come up after shows and said, oh, no one ever said it that way, and I now see it differently. And I think that's what happens. I think comedy forces you to see things from a different perspective. And I believe that because I've had experiences that taught me that lesson.
Assalamu alaikum, Sami. Aapka bahut bahut shukriya. Aapne hame waqt diya. Aur aap sach janiye ki abhi aapse baat aur guftugu shuru bhi nahi hui. To na jaane kyun mujhe hansi aana shuru ho gayi hai.
ये इफेक्ट काफी होता है मेरी तरफ से
सही तो लेकिन आप समझ सकते हैं ना, आई थिंक आपको वो ऑरा है कि आप अगर हमें एहसास हो रहा है कि आप इर्द गिर्द गई हैं तो खुद ही इंसान हम तैयार हो जाते हैं कि अभी कुछ हंसने को कुछ मौका मिलेगा।
कोशिश तो यही रहती है, लेकिन जब जब इस मामले में फेल हो जाता हूँ तो फिर भी काफी बुरा लगता है क्योंकि मेरा जॉब ही है ये लोगों को हंसाना, तो कोशिश हमेशा वही करता हूँ।
नहीं, मैं समझती हूँ और मेरे सामेईन जो हमें इस वक्त हमारे सुन रहे हैं वो भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि लोगों को हंसाना आसान काम नहीं है। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है लोगों को हंसाना, खासतौर पर आजकल के वक्त में हंसने की बात हो रही है। तो मैं आपसे पूछूंगी, हम क्यों नहीं हंसते, या क्या अगर हम हंसते हैं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए कि क्या हम हंसते हैं, क्या हमें हंसना पसंद है, या हम क्या है हमारा मसला, हमें हंसी क्यों नहीं आती?
अच्छा, हंसते तो बहुत है हमारे पाकिस्तान में, यानी कॉमेडी की बहुत लंबी हिस्ट्री है और काफी यानी मेरे जो हीरोज थे कॉमेडी वगैरह में वो थे मोइन अख्तर, अनवर मकसूद, इस तरह के लोगों से मैंने सीखा था और उनकी भी वो 50-50 जो हम देखते थे और अभी तक यानी चलता रहता है कॉमेडी काफी। तो पाकिस्तानियों में आदत तो है हंसने की, हमारा जो है जो सेंस ऑफ ह्यूमर कहा जाता है हमारा थोड़ा ज्यादा गोरे कौमों वगैरह से थोड़ा ज्यादा इंटेंस है क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो भी ज्यादा इंटेंस है, तो यानी जिस चीजों से हम हंस रहे हैं वो शायद और लोग सोच के बोलेंगे यार ये तो बहुत ही सीरियस मामला है लेकिन ये लोग हंस रहे हैं, वो पाकिस्तानी आदत है हर चीज पे हंस लेते हैं। असल में जो नेगेटिव वो इमेज है ना पाकिस्तानियों का कि वो नहीं हंसते बिल्कुल ही सीरियस होते, वो पाकिस्तानी अंकलों की वजह से है क्योंकि पाकिस्तानी अंकल जितने सड़े हुए इंसान है उस दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी और कौम में किसी और लोग में। आंटियां हमेशा, मैं जब भी कॉमेडी शो करता हूँ पाकिस्तानी आंटियां ऑडियंस में होती हैं, बच्चे जब होते हैं सब हंस रहे होते हैं,
तो आप जब
हंसते हैं ना किसी और को हंसने,
आप जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो क्या आपको कुछ तजर्बों के बाद क्या आपने अब कुछ उनको अंकल सेंट्रिक मजाक भी उसमें शामिल करना शुरू कर दिए?
मैं सिर्फ ये कहता हूँ जब शो करता हूँ और पाकिस्तानी कोई अंकल हो यानी क्राउड में ऑडियंस में तो सबसे पहले उनका ही मजाक उड़ाता हूँ कि अंकल आप जो आप घर चले जाए गाड़ी में जाके बैठ जाए क्योंकि आप जब नहीं हंसते तो आपके साथ भी जो है वो भी नहीं हंसते क्योंकि आपसे डर लगता है। तो आप ऐसे करें या तो हंस लें या बाहर जाके इंतजार कर लें, एक घंटे बाद शो खत्म हो जाएगा फिर वो हंसना शुरू कर देते हैं।
सही, मतलब आप थोड़ा सा हल्के तरीके से उन्हीं को लेके साथ चलते हैं, ये बहुत अच्छा एक मैं समझती हूँ स्ट्रेटजी है। हंसने की बात हो रही है तो क्या ये अब देखिए ना मेरी हंसी नहीं रुक रही है, मुझे मालूम नहीं है कि क्या वजह है, लेकिन आपको लगता है कि हम एक साथ हंसने की बजाय एक दूसरे पे ज्यादा हंसते हैं?
हाँ ये तो है, ये बहुत बुरी आदत है वैसे हम लोगों की कि वो दूसरों की दूसरों का मजाक काफी उड़ाते हैं, और वो यानी कोई बहुत ही जालिम तरह से करते हैं हम लोग, यानी कि वो हर पाकिस्तानी जो जोक होता है वो जब भी, मुझे याद है मैं एक दफा अमेरिका में कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और ये हम लोग वहाँ मस्जिद में गए थे रमजान के लिए इफ्तारी करने, और एक मौलवी साहब आए थे पाकिस्तान से, और वो उन्होंने पूरी नमाज भी पढ़ी और अजान भी दी और फिर वो सबके साथ बैठे और खाना इफ्तारी भी की साथ, और उन्होंने देखा वो पाकिस्तान से आए हुए थे, उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो अमेरिका में बांग्लादेशी स्टूडेंट भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अरबी भी हैं, सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं ना, फौरन पाकिस्तानी को मुड़ के बांग्लादेशियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और उस वक्त मुझे जो मुझे याद है मैंने उस वक्त देखा था, सोचा था कि यार ये क्या बुरी आदत है, हम लोग फौरन दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और अगर हमारा कोई मजाक उड़ाए तो फौरन सड़ जाते हैं, ये बहुत बुरी आदत है और वो अभी तक रहता है। पाकिस्तानी जब जोक करते हैं तो एक दूसरे का करते हैं, सिंधी पंजाबी का करते हैं, पंजाबी मेमनों का करते हैं, मेमन जो है किसी और का करते हैं, वो ये नहीं है कि जो किसी और चीज के बारे में हो, एक दूसरे के बारे में होती है, और ये थोड़ी बुरी आदत है क्योंकि इसमें फिर ये पता चला था कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते।
मुझे एहसास है इस बात का क्योंकि ये जो कौमियत और नस्लों पे जो मजाक उड़ाए जाते हैं, मैं मेरा खुद मतलब ताल्लुक है एक पश्तून घराने से, तो हम तो पंजाब में बड़े हुए हैं तो सारी जिंदगी यही, कोई मुझे देखता था तो फौरन ही शुरू हो जाता था कि इधर आओ तुम एक पठानों का जोक सुनाओ पठानों का, और मैं एक टाइम आगे मैं कहती थी मुझे नहीं सुनना, तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर जो आपस में जो कौमियत के जो मजाक हैं वो जरा रिस्पेक्ट की बिल्कुल लाइन से बाहर हो जाते हैं।
इधर ऑस्ट्रेलिया में आके मुझे ज्यादा एहसास है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग काफी कहते हैं ना कि जैसे अगर आप अक्सर किसी गोरे से मिलेंगे या बातचीत करेंगे तो वो फौरन कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट जोक शुरू कर देंगे कि मुसलमानों के खिलाफ या वो या किसी और के, और हम बड़े अपसेट हो जाते हैं कि भाई देखो ये किस तरह की रेसिज्म है, वो फौरन हमारा मजाक उड़ाने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद वापस जाते हैं अपने दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, तो ये जो है ये बहुत बुरी आदत
है, एक साइकिल है। हाँ नहीं बिल्कुल। थोड़ा सा आपकी किताबों की तरफ मैं आऊंगी, चार गालिबन आप मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत बोल रही हूँ, चार किताबें लिख चुके हैं अभी तक आप?
जी जी जी
सही। सबसे जो रिसेंट है 2017 में आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखी और उसको बहुत अच्छा जो रिसीव किया गया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या आपका सोच क्या थी इस किताब के पीछे, और अगर आप हमारे जो सुनने वाले आपको सुन रहे हैं कि वो उसको जो पढ़ें तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या उसमें से लेके जाएं?
बेसिकली असल में वो किताब का आइडिया ये आया था, मैं जो हूँ इधर ऑस्ट्रेलिया में अब 6 साल हो गए मेरे, जब वो किताब लिखी थी तो 4-5 साल हो गए थे, और ये और हर वक्त सर लोग वही बातें कर रहे होते थे कि कोई कुछ टेरर अटैक होता था कहीं भी दुनिया में, अगर यानी एम्स्टरडेम में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, और सिडनी में हो गया, कहीं भी हुआ, एक साइड पे सब खड़े हो जाके कहते थे कि भाई ये मुसलमानों ने नहीं किया क्योंकि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, और दूसरी साइड पे सब कहते थे ये हर मुसलमान टेररिस्ट है क्योंकि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ टेररिस्ट, ये जो है ये दो साइड जो है खड़े होके वही चीखम चलाई शुरू करते थे, और जो फॉरन प्राइम जो मुझे याद है टोनी एबट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फॉरन कह दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी नीड्स टू डू मोर, कि जैसे कोई पूरी कम्युनिटी का एक ही दिमाग है, ये नहीं कि यू नो हर तरह के लोग हैं, दूसरे कल्चर्स बैकग्राउंड्स कम्युनिटीज सब लोग, तो इन चीजों पर मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, मैंने सोचा कि यार कुछ एक्सप्लेनेशन तो करूँ, कुछ रिसर्च करूँ कि ऑस्ट्रेलिया में अगर रह रहा हूँ तो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी कौन है, किस तरह के लोग हैं, क्या क्या बिलीव करते हैं, कितनी वैरायटी है उनमें, कि कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई इथियोपिया से है, कोई लेबनान से है, तो वो सब क्या एक ही दिमाग के हैं और आइडियाज के हैं, और इसके साथ जो है मेरी भी अपनी चेंजिंग बिलीफ का मुझे कुछ लिखना था, क्योंकि मैं जो हूँ पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान का बड़ा हूँ, और मैं यू नो मुसलमान फैमिली से हूँ, मुसलमान बैकग्राउंड से हूँ, ईद वगैरह अभी तक मनाते हैं मेरे घर में, लेकिन मैं बेसिकली जो एथियस्ट कहा जाता है ना, एथियस्ट बन चुका हूँ काफी वक्त पहले, और वो जो है पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरह की बात करें तो आपको फौरन वो मुर्तद कह के आपको मार देते हैं, वो काफिर कह के खत्म कर देते हैं, इधर जो ऑस्ट्रेलिया में मुझे फ्रीडम है, तो ये भी मुझे बात करनी थी कि इधर हैं लोग जो इस्लाम में मानते थे अब नहीं मानते, और वो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, अगर आपको इसमें कोई इतनी ज्यादा दिक्कत है तो फिर आप जो है बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो भी मुझे इन्वेस्टिगेट करना था, तो मैंने किताब इसी मामले पे लिखी कि इधर मुस्लिम कम्युनिटीज कौन है और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज कौन है, एक दूसरे के خلاف کیا ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہیں, اس طرح کی چیزیں. مجھے بہت یعنی انٹرسٹنگ لوگ ملاقات ہوئی, پروگریسو مسلمز آف آسٹریلیا کی ایک کمیونٹی ہے, پھر اپنے جو کنزرویٹو مسلمز آف آسٹریلیا کی کمیونٹیز ہیں, پھر جو ہیں وہ ڈفرینٹ بلیو سے شیعہ, کوئی سنی, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, اس طرح کی سب چیزیں, وہ سب کافی بات چیت ہوئی, کافی ریسرچ کی, کتاب اسی معاملے میں لکھی. کتاب نکلنے کے بعد جو ہوا وہ الگ قصہ ہے, کیونکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جتنی میں نے نیوانس کتاب میں ڈالی, جتنی میں نے ڈیٹیل کتاب میں ڈالی, وہ سب چھوڑ کے لوگوں نے بس ایک یوٹیوب کلپ پہ مان لیا کہ بھائی سمیع شاہ کو اب کافر ہے, اس کو مار ڈالو, مجھے گالیاں گلوچ, اور وہ سب مسلمان کمیونٹی سے فوراً جو بری عادتیں ہماری کہ اپنی نیگیٹو سٹیریوٹائپس کو ہی کنفرم کرتے ہیں, وہی فوراً شروع ہو گیا تھا.
میں تھوڑا سا آپ کی جو سڈنی مارننگ ہیرلڈ میں آپ کے ایک آرٹیکل چھپا اے بی سی کو لے کر آپ کے ایکسنٹ پہ جو تھا, تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کیا ہے معاملہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس بھیجے جانے کی, کیا بات ہے؟
تو ہوا یہ کہ بیسکلی میں جو ریڈیو شو کرتا ہوں اے بی سی ریڈیو میلبرن کے لیے کو ہوسٹ ہوں, اور اس شو میں یعنی بریکفسٹ شو ہے, تو ہر ہوسٹ کی تھوڑی بہت اسپیچ ٹریننگ ہوتی ہے. میں پاکستان سے ہوں, اسپیشلی کراچی سے ہوں, تو میں بہت تیز بولتا ہوں, تو وہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سلو بولے, لیکن جب وہ اسپیچ ٹریننگ کرتے ہیں تو اس میں جب آسٹریلین ایکسنٹ بھی آپ کو تھوڑا بہت سکھاتے ہیں, اس پہ مجھے کافی یعنی غصہ چڑھا, کیونکہ میں نے کہا دیکھو پاکستانی ایکسنٹ جو ہے وہ میری ایک وہ میری آئیڈینٹی ہے, میں ہوں پاکستانی, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں آیا ہوں, آسٹریلیا میں بھی رہتا ہوں, ڈیول سٹیزن ہوں, لیکن میں زندگی بھر پاکستان میں رہا ہوں, جس طرح میں بات کرتا ہوں وہ بھی میری آئیڈینٹی ہے. جب لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں یو نو, سننے والے جو لوگ ہیں, پاکستانی کوئی آ گیا, کوئی انڈین آ گیا, کافی دفعہ ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ یار ہماری آواز کا کوئی بندہ ریڈیو پہ شو کرتا ہوا, ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم آسٹریلیا میں سن سکیں گے. تو یہ مجھے بہت بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح کی باتیں سن کے. تو جب وہ ایکشن چینج کرنے کا وقت آیا تو اس پہ میں اڑ گیا کہ میں نہیں کرنے والا اور نہ مجھے پسند ہے یہ کرنا. تو یہ اے بی سی کی طرف سے بھی کافی کریڈٹ ہے کہ ان لوگوں نے مان لیا اور مجھے شو کرنے دیا, اور میں ابھی تک شو کرتا رہتا ہوں. لیکن ہاں یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک خیال نہیں آیا تھا کہ کتنی زیادہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے یہ صرف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, ایکسنٹ وغیرہ میں ہی ابھی تک لگی.
تو اس آرٹیکل میں آپ ہی کو کوٹ کیا گیا ہے کہ جو کمفرٹ ہے آڈینس کا اور آپ کے ساتھ یا کسی بھی پریزنٹر یا پرفارمر کے ساتھ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں اس کو دیسی کہہ کے بلاؤں گی کہ دیسی اگر ایکسنٹ یا خاص طور پہ ساؤتھ ایشین ایکسنٹ کا کوئی پرفارمر پرفارم کرتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے صرف اس کی ایکسنٹ کی وجہ سے تھوڑا گھبرا جاتے ہیں سننے والے, انٹیمیڈیٹ آپ کو لگتا ہے وہ ہوتے ہیں؟
میں سوچتا نہیں تھا, لیکن اب میرے خیال میں ایک وہ ریڈیو کا بھی معاملہ ہے. میں کامیڈی شوز کرتا ہوں, اسٹیج پہ کرتا ہوں, میں ڈبلیو اے میں, ویسٹرن آسٹریلیا میں, پبز میں, کلبز میں, یعنی ہر طرح کے آڈینسز کے لیے شو کیا ہے. اس وقت کبھی آڈینس ممبر کو کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, اور میرے خیال میں کیونکہ وہ جب ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ میری شکل دیکھ سکتے ہیں نا, تو پھر ان کو وہ ایکسنٹ سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ کانٹیکسٹ میں ڈال سکتے ہیں. کانٹیکسٹ کی بہت ضروری چیز ہے یہ. جب ریڈیو کرو صرف آواز ہوتی ہے نا آپ کی, صرف شکل نہیں ہوتی کسی, تو اس وقت اگر کوئی ایک دم سے ریڈیو آن کرے اور وہ آسٹریلیا میں ریڈیو سن رہا ہے اور ایک پاکستانی بندہ ریڈیو پہ بات کر رہا ہو اور گیسٹ نہیں ہے وہ ہوسٹ ہے, تو وہ ان کے لیے کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو رہا کیوں ہے. اگر ہم پاکستان میں ہوتے تھے اور ایف ایم 89 یا کوئی ایف ایم 100 یا کچھ لگا لیا اپنے کراچی میں یا کہیں, اور اس میں ریڈیو ہوسٹ کا امریکن ایکسنٹ ہوا, تو یعنی مجھے یاد ہے ایک دو ہوتے تھے وہ وہاں امریکہ میں پڑھ کے واپس آتے تھے, امریکن ایکسنٹ سے بات کرتے تھے اور فوراً میسیجز ہم لوگ سب بھیجتے تھے. مجھے بھی یاد ہے میں نے بھی بھیجا ہوگا یار اس امریکن کو آف کرو, کسی دیسی کو ڈالو نا, کیا مزاق ہے. یہ ہے کہ اب میں نے ایک سال کے لیے وہ شو کیا ہے, ایک سال گزر چکا ہے, ریٹنگ بھی بڑھ چکے ہیں ہمارے سب کچھ, اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لسنرز جو ہیں, جو سننے والے ہیں شو کے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ مجھے سمجھ جاتے ہیں, اور بھی جب دیسی شو پہ آتے ہیں ان کو بھی بہتر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اور مجھے کافی لوگوں سے میسیجز آئے ہیں کہ میں پہلے تمہارا شو نہیں سنتا تھا کیونکہ مجھے عجیب لگتا تھا کہ پاکستانی بندہ شو کر رہا ہے, اور اب میں تمہارا شو سنتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ پاکستانی شو بندہ شو کر رہا ہے.
زبردست سمیع, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن آپ بس جانے سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی بھی آپ پرفارم کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو قریب مستقبل میں کہاں آپ پرفارم کریں اگر ہمارے سننے والے آپ کو آ کے دیکھنا چاہیں اور سننا چاہیں؟
ابھی جو ہے میں مین تو میرا وہ ریڈیو پہ ہوتا ہوں میں, اگر آپ سننا چاہیں تو. اس کے علاوہ جو کامیڈی شوز میں کرتا رہتا ہوں, لیکن وہ کافی کامیڈی کلبز وغیرہ میں ہوتے ہیں. ابھی میلبرن کامیڈی فیسٹیول ہر سال ہوتا ہے, تو وہ مارچ 28th से लेके अप्रैल मेरे ख्याल में 21st तक चलेगा, तो उसमें मैं शो कर रहा हूँ.
हम हंसने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे बस. अपना ख्याल रखिएगा.
थैंक यू जी. थैंक यू.
मजीद दिलचस्प मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए.